ये वर्तन आज 6 अगस्त 2020 है, वो आपके लिए ये दिन मंगलमय हो। आप प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन करते हो, सुनते हो और कुछ न कुछ प्राप्त करते हो। विषय है भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 18, विद्या विनय संपने ब्राह्मणे हरि हस्तनी सुनी च सपाके चा पंडिता संदर्शन। यानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी सम रूप परमात्मा को देखने वाले है। बेसंग लोगों के द्वारा ये श्लोक प्राय सम व्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु श्लोक में सम वर्तना न कहकर सम दर्शन न कहा गया है, जिसका अर्थ है सम दृष्टि न कि सम व्यवहार। सम दृष्टि और सम व्यवहार में आप अंतर जानेंगे हूँ कि हमने अपनी दृष्टि सबके लिए प्रतीक एक जैसी रखनी है और सम व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे कि यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण चांडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति सम व्यवहार असंभव है, क्योंकि इनमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है न कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है न कि कुटिया का। सवारी हाथी पर ही की जा सकती है न कि कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और हमारा दुख हमारा होता है। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सहे नहीं होती है। ऐसे ही प्राणियों से विषम व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में संभाव होना चाहिए। तो आपने तो समझ गए ना कि दूसरे को जो दुख है तो उनके दुख की अनुभूति तो हमें होनी चाहिए और सम दृष्टि होनी चाहिए। सम व्यवहार करेंगे तो वो करना ही कठिन है। श्लोक 19 है, जिता सर्गो एशाम सम स्थित मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मी ते स्थिता। जिन कांताकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। तो सम दर्शना प्रथम श्लोक में हमने देखा, 18वें श्लोक में, कि हमारी दृष्टि सम होनी चाहिए। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिनकी दृष्टि सम होती है वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी सम है। अगर हम भी सम हो गए तो हम ब्रह्म ही हो गए, ब्रह्म में स्थित हो गए। जो परमात्मा में स्थित महापुरुष होता है उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में ना राग द्वेष होना, ना हर शोक होना और कोई और विकार भी ना होना। इस प्रकार की बुद्धि को समता बुद्धि के नाम से कहा गया है। उनके पास भी समता बुद्धि जो स्थित हो गया है वो जीवन मुक्त कहलाता है। श्लोक 20 ना प्रेश एक प्रियम प्राप्त्या जेत प्राप्या चाप्यम स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्म विद ब्रह्मणी स्थिता। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विघन ना हो वह स्थिर बुद्धि वाला मूलता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म ज्ञानी में जो गुण बताए गए हैं जो भगत में बताए गए हैं, क्या कि कोई अप्रिय है उसको देखकर हमें दुख न हो जाए और जो बड़ा प्रिय है उसको मिलकर हमें बड़ा हर्ष न हो, हमें सब बुद्धि रहना है। और जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो इन बातों में नहीं आते, ना वो प्रियता में आते ना आपलीता में। उनके अंतर्कण में ना राग होता ना द्वेष, ना हर्ष होता ना शोक। ज्ञानी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब ज्ञानी के हृदय में विकार आ जाता तो वो दोषी हो जाता है। ब्रह्म को जानने से क्या होता है, ये अहंकार खत्म हो जाता है और सब कुछ उसके लिए ब्रह्म ही दिखाई देता है। गीता का 21वां श्लोक है, 22 परशे बसत्तात्मा बिन ज्ञातमनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षे मश्नुते। बाह्य स्पर्श अर्थात प्राकृत वस्तु मात्र के साथ संबंध, जैसे कपड़ा, कोई भी घर बाहर जो वस्तु है उनके साथ संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, चाहे कोठी है चाहे कुटिया है कुछ भी है जो भी समान है, उनके साथ हमारी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा साधक अंतःकरण में एक सात्विक सुख को भोगता है और उसे ये सात्विक सुख मिलता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। फिर उसको अक्षय सुख जो कभी नहीं समाप्त होने वाला सुख है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। वो चाहे कोठी में बैठे, महल में बैठे, कुटिया में बैठे, उसके पास थोड़ा सामान है कुछ भी है, वो हमेशा ब्रह्म में स्थित है, इसलिए उसको हमेशा सुख अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य की संसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब साधु को सात्विक सुख प्राप्त होता है। ये भी समझने वाली बात है कि सब लोग बोलते हैं कि ये सात्विक सुख कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जब आसक्ति मिट जाओगी, किससे आसक्ति मिटेगी, संसार के प्राणियों से तथा पदार्थों से, तो साधक को सात्विक सुख मिल जाता है। जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता तो उसमें संतोष करता है, उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख जो प्रकृति होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, ऋतु निरंतर एक रस रहता है और ये अखंड सुख मोक्ष का सुख है। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि एवते अधंत बनता कौनते ना केशु रमते बुधा। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषय के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, जो हम देखते हैं ना संसार में, है ना, तो आंखों द्वारा तो दूसरे इंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं, वो नहीं ठीक है, वे आदि अंत वाले हैं और उनसे दुख पैदा होता है। अतः विवेकशील मनुष्य इंद्रियों के सुख में सुख नहीं मानता है। संसार के सभी सुख दुख अपेक्षा से हैं, कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यदि संसारिक सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूप ही हो जाता, कारण कि संसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति है ही नहीं। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड रस में ही है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है, ये कुदरत का नियम है। संसारिक सुख मिलने और बिछुड़ने वाला है, जबकि स्वयं निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। संसारिक सुख स्वयं का साथी नहीं है, इसलिए विवेकी साधक संसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी और अप्राप्ति में दुखी नहीं होता। संसार के सुख भोग से मनुष्य को थकावट आती है, लेकिन परमार्थ का सुख भोगने से शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। जब मनुष्य को नींद आती है तब बड़े से बड़े संसारिक सुख का विचार करके सो जाता है, सोने से उसकी थकावट मिट जाती है, विश्राम मिलता है, ताजगी आती है। यदि वो सोए नहीं तो पागल हो जाए। संसारिक सुख हत्या के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। अब मैं कुछ भक्तों के आपको संस्मरण सुनाऊंगी। बिमला देवी लिखती है, श्री महादेवी तीर्थ शारदा मां सेवा संघ द्वारा संचालित शारद वाणी पत्रिका के जासूसी के प्रकाशन पर श्री श्रीमान जी भाई जी व सभी संघ सदस्यों को हार्दिक बधाई। विशेषकर श्री तिमेश विकास शर्मा व शाकुर जी को बधाई देती हूँ। श्री श्री महाराज के अनुकंपा व श्री श्रीमान जी के शुभ आशीर्वाद व प्रेरणा से पत्रिका संबंधित जो कार्य हो रहे हैं वह सराहनीय है। जनवरी 1994 से जब तक मुझे श्री माँ जी के सानिध्य में रहने का स्वावसर प्रदान हुआ है तभी से मैं भगवान से जुड़ी हूँ। श्री महाराज जी से मेरी ये प्रार्थना है कि मैं भविष्य में भी ऐसे ही जुड़ी रहूं और मुझे उनकी कृपा मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बिमला। आगे हैं ज्ञानेश्वर चिन्मय साधना केंद्र पवनार जिला वर्धा महाराष्ट्र से। शारद वाणी के 50वें अंक पर मैं श्रीमान जी तथा शारदा माँ सेवासंघ को हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री माँ के सानिध्य से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि माँ प्रेम की मूर्ति है जहाँ से ज्ञान की गंगा बहती है। मैं तो एक पायल हूँ, माँ की क्या स्तुति करनी चाहिए ये मुझे कुछ पता नहीं है। माँ ज्यादा से ज्यादा देर तक रहने वाला आनंद देने वाली ज्ञान दात्री है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा श्री माँ के सानिध्य में रहूं और उनका आशीर्वाद मुझे बना रहे। अगले हैं संत माया देवी शिमला से। शारद वाणी के 50वें अंक पर हम श्री गीता माँ गीता कमाल दास जी एवं संघ को हार्दिक बधाई देते हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी एवं गीता माँ का हमारे परिवार पर तथा हमारे पुत्र ठाकुर दास पर जो आज महादेवी तीर्थ में कमाल दास के नाम से जाने जाते हैं बहुत आशीर्वाद है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पुत्र कमाल दास को श्री स्वामी एवं श्री माँ ने अपनी छत्र छाया में लिया, अपना मानस पुत्र माना तथा श्री माँ जी ने उनका पालन एक माँ की भांति किया। हमें ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आज हमारा पुत्र कमालदास श्री माँ देवी तीर्थ में महात्मा के रूप में विराजमान है। राज्य के सद वचनों को अनुसरण करते हुए मानव धर्म की सेवा करते हुए वह अपने जीवन को यहीं पर लगा दे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। संत माया देवी। आगे है शालीना गोयल। मैं शालीना गोयल धर्मपत्नी शिवबिंदर गोयल हिमाचल स्टेशनर्स मन माजरा चंडीगढ़ से शारद वाणी के 50वें अंक पर श्रीमान जी तथा कमाल भाई जी को संघ की तथा संघ को बधाई देती हूँ। शारद वाणी पत्रिका के छुपवाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य श्री स्वामी जी की कृपा का फल है। मेरे स्वामी जी के साथ खेलने प्रसाद खाने का सौभाग्य बचपन से ही मिला है। मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री अपने पिता विजय कुमार सिंह तथा माँ श्रीमती किरणा देवी के साथ गया हर सप्ताह रविवार को मंदिर में जाती थी और अपने माता तथा पिताजी को मंदिर के कार्यों में कार्यरत रहते देख कर बड़ा मुझे आनंद आता था। मुझे लगता था ये भी हमारा ही घर है। जैसे घर में मेरी माता जी और पिताजी घर के कार्यों को करते हैं ऐसे ही प्रति सप्ताह वो मंदिर में आकर काम में प्रातः से सायंकाल तक लगे रहते थे और मेरी माता जी रसोई संभालती थी। मेरे पिताजी इंजीनियर होने के नाते मंदिर के सभी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते थे तो बचपन से जो ये मुझे देखने का और मंदिर में रहने का सौभाग्य मिला है। और अब भी जब मैं आती हूँ तो श्री महाराज की कुटिया में जाकर मुझे शांति मिलती है और साथ ही जो भंडारा महाराज जी ने चलाया है उसमें जा कर के प्रसाद खाने का दिव्य आनंद मैं आज भी वहाँ प्राप्त करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ गर्ल। अच्छा, अब मैं आपको श्री रामानंद आचार्य, राम नरेश आचार्य, श्री मठ काशी, देवभूमि कुल्लू स्थित वैष्णवी धाम हिमाचल ही नहीं अपने संपूर्ण सनातन धर्म का गौर वर्धक रूप प्रकट हुआ है। संपूर्ण परिसर दिव्य तथा प्रेरक है। बनावट की अत्याधुनिक संयोजन संरचना के साथ ही व्यक्ति के अनुपम अवशिष्ट संयोजन संरचना को बेजोड़ रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है। देवाराधन के साथ साधु ब्राह्मण अभ्यंगत तथा गौ सेवा में इसे वस्तुता धमत्व प्रदान किया है। अपने संतों एवं भक्तों के साथ 11 से 16 जून तक इस धाम में रहकर दिव्य अनुभूति से मंडित हुआ हूँ। संस्थापक स्वामी जी तथा वर्तमान सेवकों की भविष्या मंगलवार तथा संघ द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक शारद वाणी के 50वें अंक पर श्री माँ गीता जी को बधाई देता हूँ। रामानंद आचार्य, रामानंद आचार्य, श्री मठ काशी। अभी मैं आपको श्री ब्रिज मोहन जी शर्मा जी का जो उन्होंने संस्मरण लिखा है सुनाती हूँ। वैष्णो माता मंदिर कुल्लू शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है और माता यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। वर्ष 1970 में मैं राजकीय सेकेंडरी स्कूल कुल्लू में अध्यापक का कार्य कर रहा था और एक दिन मालूम हुआ कि माता वैष्णो की गुफा खाड़ा विहार से आगे है। मैं अपने साथियों सहित रविवार को वहां गया। वहां पहुंच कर देखा भगवती की गुफा के दर्शन करने के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। हमने चलना शुरू किया पर जब एक कदम आगे रखते तो पगडंडी से पांव पीछे फिसल जाता था। स्वामी जी के अंतक यत्नों से आज इतना भव्य मंदिर तैयार हो चुका है जो उसमें से बिल्कुल अलग है। स्वामी जी महाराज निष्काम भाव से जन साधारण की सेवा में लगे रहते थे। 1993 में मैं अपने परिवार सहित इस मंदिर में शारदा माँ सेवा संघ से जुड़ गया। मंदिर में प्रवेश मात्र से ही मन को शांति मिलती है। आज ये मंदिर हजारों श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय स्थल व प्रेरणा स्रोत बन चुका है। आज इस भव्य मंदिर में अन्य मूर्तियों की स्थापना की गई है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ सभी धर्मों जातियों तथा प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को बिना किसी भेदभाव के दर्शन की पूर्ण स्वतंत्रता है। सभी भक्त व श्रद्धालु एक स्थान पर बैठ कर माँ के आशीर्वाद से लंगर में प्रसाद पाकर धन्य होते हैं। देश विदेश से आने पर श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों के लिए रात्रि ठहरने की व्यवस्था है। कई प्रकार की बाधाएं आने के बाद भी अखंड ज्योति व लंगर सेवा सुचारू रूप से चल रही है। वास्तव में मंदिर मन को शांति व आत्मा को संतोष प्रदान करता है। मंदिर की गतिविधियों को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए श्री गीता माँ स्वर्गीय श्री विवेक भाई जी व भाई श्री कुमार जी का स्वामी सेवदास जी के आशीर्वाद से बहुत योगदान है। मेरी धर्मपत्नी सोमलता शर्मा मेरा आध्यात्मिक सम्मेलन में जब जाती तो मैं भी धार्मिक आध्यात्मिक सम्मेलन में प्रवेश लेता और हम भी वहाँ सदस्य बने। आध्यात्मिक सम्मेलन प्रति वर्ष होता है, गुरु पूजा के समय होता है और शिव माँ जी हमें कुछ विषय देती हैं, 5 विषय हमें मिलती हैं। प्रति वर्ष नया से नया विषय होता है, उस विषय में हमें किसी एक पर वहाँ भाषण देना होता है और बड़े अच्छे जो विषय चुने जाते हैं उनमें से कोई एक अच्छा सा विषय जो मेरे इंटरेस्ट का होता था मैं वहाँ पर जाकर बोलता। आज वो सम्मेलन जारी है और हम वहीं जाकर के बहुत कुछ जो शायद हमने घर में या शिक्षा के समय या शिक्षक के समय नहीं सीखा वो हमें आज श्रीमान देवी तीर्थ के प्रांगण में अध्यात्म सम्मेलन के दौरान प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमान जी से आशीर्वाद मांगते हुए ये कहूँगा ये भव्य मंदिर आने वाली और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन देता रहेगा। ब्रजमोहन शर्मा। आगे मैं लिखती हूँ एक सच्चे कर्मयोगी ये भी हो गया। आज फिर एक हम चलते हैं इंग्लिश का माई फर्स्ट विजिट टू महादेवी तीर्थ। लिखने वाले हैं जिन्होंने लिखा है माई फर्स्ट विजिट टू महादेवी तीर्थ सल्लाभान। सल्लाभान जी लिखती हैं उनका इंग्लिश है उनको हिंदी नहीं इतनी आती इसलिए उन्होंने अपने विचार इंग्लिश में प्रकट किए हैं। My first visit to Mahadevi Tirth. First, I would like to congratulate Shri Maji and the members of Sharda Maa Seva Sangha on Golden Jubilee of Shardabani. During the turmoil of Kashmir, in starting 1990, lakhs of Kashmiri Pandits were forced to migrate to Jammu and other parts of India. Due to Islamization and radicalization, our family also migrated to Jammu because both of us, me and my husband, Mr. Suman Bhan, were doing government job. Myself working with J&K Bank and Sumanji as civil engineer with PWD and my daughter Shivani, 5 years old, was studying in Lower KG along with my parents in law. My husband joined head office at Jammu and Swami got admitted in St. Peter's School, second shift, B. Higher Banu, Nicole Jammu. To adjust in such accommodation was very troublesome to live in exile in our own state country. All were struggling in Jammu trying to manage and adjust the things with all hurdles and topsy and turvy. Meantime, management of bank took decision to adjust the staff outside Jammu. I tried my best to be adjusted at Delhi or Shimla, but all in vain. Only option was left Kullu branch in HP. Immediately we took the decision for Kullu in view of the climatic condition, location, culture, vice, rich and suitable for my parents-in-laws and family, being Devbhumi Tapovan, etc. We started our journey last week of July in 1990. Afternoon and reached Kullu next morning. In the way I and my husband were talking, here we will get down from the bus. An old man and a couple was listening and they told us that you should get down at Akhada Bazaar. When bus reached Akhada Bazaar, Kullu in moving, we moved down from the bus. One person came and took our suitcase from our hands and told, I will show you the way of bank, come with me. He took us to a small building where we took bath, etc. Then we went to Dhaba and took breakfast. We took a rented flat at Akhada Bazaar in Kullu. I joined my duties and Swami got admission in Trinity School at Mohol. Now we started adjusting with new atmosphere and surroundings to start from zero again in life. reaching another, reaching to rest, and again from rest to suitable life. After some days, one of my colleagues, Mr. Roshan Lal, told me about the temple, Mahadevi Tirth Sthan and Mataji. I was very curious to see the temple. On next holiday, we walked about 2 kilometers from house and reached Mahadevi Tirtha along with Roshan Lal, called as guide. The temple is situated on the bank of Bias River with stone steps leading to temple, with the bandhara situated on the bank, semi kacha pakka, typical village structure. We entered the cave where Mahadevi was Virajman, had Dashna of Trimurti, Shiva temple, Radha Krishna temple, etc. Then we went to Swamiji room and then Mataji rooms, etc. After having closed, looked deeper, attracted with the simple sitting with full of positive vibration, unexpected feelings, heavenly with calm and quietness, were cut off from external disturbances, had a darshan of Mata Shri Ma Gita Devi Ji. She was early 40s, with shining face, divine power, simple with the sari robe, Ramchani Sarupani. We bore her feet. She gave us smiling and warm welcome and introduced herself as Mummy Ji Sri Gita Ma. She gave us millet and some sweets, got from kitchen, served herself, which impressed me more. My hosting Kullu proved a blessing to me and my family to meet such divine Ma. Due to her inner blessings, we reached her back. After this interaction, our journey started to temple. I got my mother, Ma Ji, and Shwani got Guru and Nani Ma. The journey is continuing since then. Mataji told me about the teaching of Kheda Purusha Swamiji Maharaj, how he built the temple stone by stone, step by step, hard, heavy, and most important saying of Swamiji is Nishkam Seva Hi Puja Hai. If a man is served as a reflection of God, the serving man himself becomes a manifestation of God. Swamiji was having supernatural powers, able to relieve the people from the suffering by his mere touch or blessings. Chenamrit or Prasada. The Pancha Si, the suggested by him to them all was Ram Ram Jap. The repeated entrance name of God. Swamiji Bhaj, involved with others, being the incarnation of God, was sent to rediscover Mahadevi Tirtha and Mata Shri Gita Ma. I myself observed that Mahadevi Tirtha is a source of infinite happiness for all humanity. There is no differentiation between rich and poor. Mataji showed me the path of spiritualism, made me understand Ramayana, Sri Bhagavad Gita and other spiritual books, and made me to understand that we all are stuck to baseless issues. Books and made me understand that we all are stuck to baseless issues in daily life and we need the bells around us. The solution is to let us all rise to aggression. Wrong thinking is the problem. Right knowledge is the ultimate solution to all problems which we face in daily routine life. Selflessness is the way to progress and prosperity. every act can be the act of prayer. He knows ego of individuality and rejoice, bless the infinity connect to higher consciousness. Mataji gave us the path and guiding principles through Sharda Ma Sevasan, which was established by Swamiji and Mataji. First, I will say love for truth. Second, universal brotherhood. Third, worship of mother. Fourth, services. Fifth, leading sattvic life and developing reverence and faith in God. Sixth, imbibing good quality. Seventh, introspection. Eighth, sattvic food. By the grace of Swamiji and Mataji, branches of Sharda Ma Sevasanga stand established in various places of country and outside country, as in USA, UK, Singapore, Adi. In Astra, Jammu also, Sonipat, Assam, Bangalore, Calcutta, in HP, Guntur, Palampur, Jogindranagar, Astra, with the association with Guru Ma and Temple Loan Associated since 28 years long, changed my calamity into blessings. Whatever today we are, it is due to the blessings of Guru Ma and Temple. Sallama. Inni shabdon ke saath main apni bani ko biraam deti hoon. Gita Ma, Jai Mata Di.